तर्क भाषा के पांचवें पाठ में आप लोगों का स्वागत है। आपने अभी तक इसकी भूमिका पढ़ी है, फिर जो पहला सूत्र है न्याय दर्शन का, उसका उच्चारण सीखा है और उसका जो मतलब था कि मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है न्याय दर्शन के अनुसार, तो उसमें था कि 16 पदार्थ जो प्रमाणादि जो पदार्थ हैं उसका अगर सम्यक ज्ञान होता है तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर आपने सुना कि शास्त्र की त्रिविधा प्रवृत्ति होती है, माने शास्त्र में तीन तरह से जो है विचार किया जाता है, एक तो उद्देश्य होता है, दूसरा लक्षण होता है, तीसरी परीक्षा होती है। उद्देश्य किसको कहते हैं तो नाम मात्रेन वस्तु संकीर्तनम, लक्षण क्या होता है तो लक्षणं तो असाधारण धर्म वचनम, और परीक्षा क्या होती है उसको अभी तक आपने नहीं पढ़ा। आज मैं किताब की कोई लाइन शायद नहीं पढ़ा पाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा लक्षण के बारे में, तो आप कापी और कलम सामने में जरूर रखिए, कुछ पहले लिखाऊंगा फिर उसके बाद समझाऊंगा। और आज का पाठ बहुत ही वैल्यूएबल है अन्य ग्रंथों को पढ़ने के लिए, और ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। तो किताब कापी और कलम आपने सामने रख लिया होगा, अब कुछ चीज कुछ लाइनें मैं लिखाऊंगा, उसको आपको लिखना है। आप लिखिए कि दोष त्रय, ये जो दोष त्रय मैं लिखाने वाला हूँ ये लक्षण के दोष त्रय है, माने ये तीनों दोष जो है ना ये लक्षण में नहीं होने चाहिए, अगर ये तीनों दोष रहेंगे लक्षण में तो लक्षण को लक्षण नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो दोष त्रय आपने लिख लिया, पहला दोष लिखिए अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति में दोनों में अति में भी छोटी ई की मात्रा लगेगी और व्याप्ति में भी छोटी ई की मात्रा लगेगी, और अतिव्याप्ति के आगे डैश देकर के लिखिए अलक्ष्य, अलक्ष्य लक्षण गमनम, अलक्ष्य लक्षण गमनम, अलक्ष्य लक्षण गमनम, लिख लिया होगा आपने अतिव्याप्ति डैश अलक्ष्य लक्षण गमनम। फिर उसके आगे जो है ना पूर्ण विराम दे करके उदाहरण लिखना है आपको, यथा श्रृंगित्वम, यथा श्रृंगित्वम, श्रृंगित्वम में श्रृंग लिख करके और ङ में छोटी की मात्रा और आगे त्वम लगा दीजिए, श्रृंगित्वम। तो आपने लिख लिया अति दोष त्रय, दोष त्रयम, पहला दोष है अतिव्याप्ति ही, अतिव्याप्ति किसको कहते हैं तो अलक्ष्य लक्षण गमनम, और उदाहरण में लिख लिया आपने यथा श्रृंगित्वम। अब दूसरा दोष लिखिए अव्याप्ति ही, अव्याप्ति ही, और अव्याप्ति के आगे डैश देकर के फिर लिखिए लक्ष्य एक देशे, लक्ष्य के आगे एक देशे रहेगा ना तो वृद्धि होकर के बन जाएगा लक्ष्यैक देशे, तो लिखिए लक्ष्यैक देशे लक्षणस्य अगमनम, लक्ष्यैक देशे लक्षणस्य अगमनम, अगमनम के बदले आप अभवनम भी लिख सकते हैं, तो लक्ष्यैक देशे लक्षणस्य अगमनम। इसका उदाहरण लिखिए यथा शाबलेयत्वम, शाबलेयत्वम में शुक्ल वाला श लिखना है और पेट कटा हुआ ब लिखना, शाबलेयत्वम, शाबलेयत्वम, यथा शाबलेयत्वम, आपने लिख लिया होगा। अब तीसरा दोष लिखिए असंभवः, असंभवः लिखने के बाद डैश दीजिए, असंभव के बाद डैश, फिर लिखिए लक्ष्य मात्रे लक्षणस्य अगमनम, लक्ष्य मात्रे लक्षणस्य अगमनम्। लक्ष्य मात्रे लक्षणस्य अगमनम्। एक चीज मैं बता दूं आपको कि ये जो गमनम और अगमनम जो आपने लिखा है ना, तो जहाँ गमनम लिखा है वहाँ ब्रैकेट में आप एक लिख लीजिए, क्योंकि किताब में इस तरह का मिलेगा आपको, जो मैंने लिखाया है वो शायद नहीं मिले। तो किताब में जो है ना, जहाँ पर गमनम लिखा है उसके लिए ब्रैकेट में लिख लीजिए वृत्ति त्वम, वृत्ति डबल त लिख करके वृत्ति छोटी की मात्रा वृत्ति, और उसमें त्वम लगा दीजिए वृत्ति त्वम। अब जैसे आपने लिखा कि अतिव्याप्ति में आपने लिखा होगा कि अलक्ष्य लक्षण गमनम, तो आप लिख सकते हैं अलक्ष्य लक्षण वृत्तित्वम। तो अगमन ये गमनम के बदले वृत्तित्वम प्रयोग होगा, और जहाँ अगमनम है वहाँ पर अवृत्तित्वम आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ब्रैकेट में आप अगर डाल लेंगे ना तो क्या होगा, समझने में भी आसानी होगी। अगर परीक्षा में लिखने की बात हो तो ये वृत्तित्वम और अवृत्तित्वम भी आप लिख सकते हैं, और जो मैंने लिखा है वो तो लिख ही सकते हैं। वो क्या है कि समझने में आसानी होगी, वृत्तित्वम का मतलब होता है होना और अवृत्तित्वम का मतलब होता है नहीं होना, बस इतनी ही बात है। तो आप दोनों तरीके से उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से तीनों दोषों को आपने लिखा, पहला दोष था अतिव्याप्ति, दूसरा दोष था अव्याप्ति, और तीसरा दोष था असंभव। ये लक्षण जो है, लक्षण का लक्षण इन्होंने बताया था किताब में कि असाधारण धर्म वचनम, वचनम माने कथनम, और धर्म दो प्रकार का होता है, साधारण धर्म और असाधारण धर्म। तो मैंने सिखाया था आपको कि साधारण धर्म है एक से ज्यादा में अगर धर्म रहे तो वो हो गया साधारण धर्म, और जो धर्म केवल एक में ही रहता है दूसरे में नहीं रहता वह होता है असाधारण धर्म। तो ये लक्षण का लक्षण हुआ असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। अब ये लक्षण, कौन सा लक्षण जो है वो सही है और कौन सा लक्षण जो है वो गलत है, इसका निर्णय हम इसी से करते हैं। ये जो दोष त्रय आपने लिखा है ना, इन तीनों तरह का दोष जहाँ न हो वह लक्षण वास्तव में सही लक्षण है, और इन तीनों दोषों में से कोई भी दोष अगर उसमें है तो वह सही लक्षण नहीं होकर के वह गलत लक्षण होगा। अब आपने ये जो लिखा है उसको आपको समझना है कि ये क्या है, अतिव्याप्ति और व्याप्ति और असंभव। एक पहले ये समझ लीजिए कि लक्षण जो है ना वो किसका किया जाता है, जिसका लक्षण किया जाता है ना उसे हम लक्ष्य कहते हैं। जिसका लक्षण किया जाए उसे क्या कहते हैं, लक्ष्य। तो अब इस आपने उदाहरण में पहले पुस्तक में पढ़ा है जैसे गोह शासनादिमत्वम लक्षणम, तो आप बता सकते हैं क्या कि शासनादिमत्वम अगर लक्षण है तो ये किसका किया गया है लक्षण, गो का किया गया है। तो गो जो है यहाँ पर लक्ष्य है और शासनादिमत्वम लक्षण है, तो लक्ष्य और लक्षण, जिससे पहचान संभव हो वह लक्षण है और जिसकी पहचान हो वह लक्ष्य है। इस तरह से अब हमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष जो है ना उसको समझना है। तो सबसे पहले हम अतिव्याप्ति को समझते हैं। अतिव्याप्ति में आपने लिखा अलक्ष्य लक्षण लक्षणस्य गमनम, अलक्ष्य माने जो लक्ष्य नहीं है। अब जैसे आपका लक्ष्य गो है तो गो लक्ष्य हुआ, और अलक्ष्य क्या हुआ, जैसे महिष अलक्ष्य हो गया, अश्व अलक्ष्य हो गया। तो अलक्ष्य में लक्षणस्य अगमनम, जो अलक्ष्य है जैसे गो अगर लक्ष्य है तो अलक्ष्य हो गया महिष और अश्व, तो उसमें लक्षण को नहीं जाना चाहिए। अगर उसमें लक्षण चला गया अलक्ष्य में गो महिष में तो वहां पर अतिव्याप्ति मानी जाएगी। इसका उदाहरण आपने लिखा श्रृंगित्वम, श्रृंगित्वम गो का लक्षण नहीं होगा क्योंकि इसमें अतिव्याप्ति दोष है। कैसे, तो श्रृंगित्वम का मतलब होता है श्रृंग वाले प्राणी में रहने वाला धर्म। तो श्रृंग वाला प्राणी जो है वह गो भी है और महिष भी है, वृषभ भी है। तो अगर हम ये लक्षण करेंगे कि श्रृंगित्वम गोत्वम माने श्रृंग वाले प्राणी में रहने वाला धर्म जो है वह गाय का लक्षण है, तो क्या होगा, महिष भी गाय कहलाने लगेगा, क्योंकि उसमें भी ये लक्षण चला गया। वृषभ भी जो है उसमें भी ये लक्षण चला जाएगा, इसलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष है, और अतिव्याप्ति दोष होने के कारण श्रृंगित्वम गोत्वम ये लक्षण सही नहीं है। तो जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से ज्यादा में अगर चला जाता है लक्षण, तो उसको अतिव्याप्ति माना जाता है। इसके ठीक उल्टा दूसरा दोष है। अतिव्याप्ति में क्या था कि लक्ष्य से ज्यादा में लक्षण जा रहा था, अब व्याप्ति में क्या होता है कि लक्ष्य जितना है आपका उससे कम में अगर लक्षण जाता हो तो वहां पर अव्याप्ति होती है। इसलिए आपने लिखा ना लक्ष्य एक देशे, माने मान लीजिए 100 आपके लक्ष्य हैं, अगर 99 में ही लक्षण जाता है, एक में नहीं जाता है, तो क्या होगा, लक्ष्य का जो एक देश है, एक देश मतलब एक हिस्सा, थोड़ा सा भाग, तो लक्ष्य के थोड़े से हिस्से में अगर लक्षण का गमन नहीं होता है, लक्षण नहीं जाता है, तो वहां पर अव्याप्ति होगी। इसमें एक ध्यान रखिएगा कि लक्ष्य मान लीजिए ढेर सारे हैं, लेकिन सब में नहीं जा करके जाना, लक्षण को क्या चाहिए, सारे लक्ष्य में जाना चाहिए ना, लेकिन सारे में नहीं जा करके वो केवल वो कुछ में जाता है और कुछ में नहीं जाता है, ऐसी अगर स्थिति है लक्षण की, तो वहां पर अव्याप्ति दोष माना जाएगा। जैसे आपने उदाहरण लिखा शाबलेयत्वम गोत्वम, शाबलेय कहते हैं ये चितकबरापन, चितकबरा कलर होता है जिसमें कि सारे कलर मिक्सअप रहते हैं, तो शाबलेय माने चितकबरा, और शाबलेयत्व माने चितकबरापन, तो चितकबरापन को गाय का लक्षण नहीं मना सकते, शाबलेयत्वम गोत्वम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कहेंगे ना तो जो जो चितकबरा रहेगा सबको गो कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि लक्षण जहाँ रहेगा वो लक्ष्य उसको माना जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अव्याप्ति दोष है। कैसे, तो जो सफेद गाय है, जो काली गाय है, उसमें ये शाबलेयत्वम लक्षण नहीं जाएगा। तो जो आपका लक्ष्य है, मान लीजिए 1000 गाय जो है उसको आपको गाय कहना है, तो केवल चितकबरा गाय में ये चितकबरी गाय में ये लक्षण जाएगा, सफेद गाय में और काली गाय में नहीं जाएगा। तो जितने लक्ष्य हैं उतने नहीं गए ना, लक्ष्य से कम में ये लक्षण गया, इसीलिए ये अव्याप्ति दोष माना जाता है, इसको भी उसमें नहीं होना चाहिए। अब तीसरा जो दोष है असंभव, ये आसान है कि ऐसा लक्षण आप अगर बनाते हैं जो कि किसी लक्ष्य में जाता ही नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको समझाने के लिए, जैसे हवा है, हवा का लक्षण अगर आप बनाएंगे कि दृश्यत्वम वायुत्वम, माने जो दृश्य है वह वायु है, तो बताइए ये वायु में जाएगा, क्योंकि वायु दृश्य है, वायु को देखा जा सकता है क्या, नहीं ना। तो इस तरह का अगर लक्षण बनाएंगे तो असंभव होगा, तो ये भी लक्षण सही नहीं होगा। इसलिए आपने लिखा लक्ष्य मात्रे अवृत्तित्व, लक्ष्य मात्र, मात्र माने सारे, तो सारे लक्ष्यों में अवृत्तित्व माने लक्षणस्य अगमनम, माने किसी भी लक्ष्य में लक्षण जो है ना जा ही नहीं पाएगा, ऐसा ऐसी अगर स्थिति है तो वहां पर असंभव दोष माना जाएगा। अच्छा, इसका उदाहरण शायद आपने नहीं लिखा, लिख लीजिए एक शफत्वम, एक शफ, शफ में शुक्ल वाला स्व लिखना है, एक शफ और उसमें त्वम लगा दीजिए, एक शफत्वम, ये शफ माने खुर होता है, और एक शफत्वम मतलब एक खुर वाले प्राणी में रहने वाला धर्म। आप देखेंगे कि घोड़े की जो खुर होती है उसमें बीच में चीरा लगा होता है, तो वो दो टुकड़े हो गए ना, वो द्विशफ हो गया, और गाय का जो गाय की जो खुर होती है उसमें चीरा नहीं लगा होता, वो जो वो पूरा का पूरा रहता है। तो अगर ये लक्षण आप बनाएंगे तो किसी भी लक्ष्य में जाएगा ही नहीं गो में, क्योंकि गाय में एक सप होता ही नहीं है, इस तरह से यहाँ पर असंभव दोष हो जाएगा। तो ये तीन तरह के दोष हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। इन तीनों दोषों से जो रहित लक्षण है वही सही लक्षण है, इसमें से एक भी दोष अगर लक्षण में पाया जाता है तो वहाँ पर वो लक्षण गलत माना जाएगा। तो आपको बहुत ही संक्षेप में मैं अगर बताऊं तो लक्ष्य से अधिक में जाना जो है अतिव्याप्ति है, जितना लक्ष्य है उससे कम में अगर लक्षण जाता है तो वह अव्याप्ति है, और किसी भी लक्ष्य में लक्षण जाता ही नहीं है, ऐसा अगर लक्षण बनाते हैं जो किसी भी लक्ष्य में न जाए तो वहां पर असंभव दोष होगा। इस तरह से इन तीनों दोषों से रहित जो लक्षण है वो सही लक्षण है, इससे एक से भी अगर युक्त हो या तीनों से युक्त हो तो वह जो है गलत लक्षण होगा। अब लास्ट में ये बता दूं कि लक्षण का प्रयोजन क्या है, तो दो प्रयोजन है, लिख लीजिए कलम से, व्यावृत्ति व्यवहार, व्यावृत्ति व्यावृत्ति, वृत्ति में डबल त छोटी इकार की मात्रा और विसर्ग, व्यावृत्ति व्यवहारश्च, व्यावृत्ति व्यवहारश्च लक्षणस्य प्रयोजनम्, लक्षण के ये दो प्रयोजन होते हैं, व्यावृत्ति और व्यवहार। अब ये व्यावृत्ति व्यवहार है क्या, तो व्यावृत्ति कहते हैं भेद का जो ज्ञान है ना उसे व्यावृत्ति कहते हैं। अब ये भेद का ज्ञान क्या है, तो महिष गाय नहीं है, घोड़ा गाय नहीं है, हाथी गाय नहीं है, इस कुत्ता गाय नहीं है, तो ये नहीं है का जो ज्ञान है ना इसी का नाम है व्यावृत्ति। भेद का जो ज्ञान है उसे कहते हैं व्यावृत्ति, माने यह गाय नहीं है, यह गाय नहीं है, यह गाय नहीं है, यह गाय नहीं है, ये हो गया व्यावृत्ति। और व्यवहार क्या हुआ, तो यह गाय है, यह गाय है, यह गाय है, इस तरह से जो आप प्रयोग करते हैं वह हो गया व्यवहार। तो लक्षण बनाने का यही प्रयोजन है कि हमें पता चलता है कि यह गाय है और यह गाय नहीं है, यह मनुष्य है, यह मनुष्य नहीं है, यह पक्षी है, यह पक्षी नहीं है। तो है वाला जो है ना वह है व्यवहार और नहीं है वाला जो है वह है व्यावृत्ति। तो व्यावृत्ति व्यवहारश्च लक्षणस्य प्रयोजनम्, ये लक्षण के दोनों प्रयोजन होते हैं। इस तरह से हमने आपको लक्षण के बारे में बताया। आज का पाठ यहीं रखते हैं, आगे का आगे पाठ में।